जयनिताय गौर प्रेमानंदे जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिब्राजगचारष्टोदरक्षश्रीमद्डिवाइन ग्रीस श्रील भय चरणारविंद भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन विविध संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिब्राजगचारष्टोदरक्षश्रीमद्डिवाइन ग्रीस श्रील भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य शिल हरदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासरी गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड श्री गिरि गोवर्धन की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुर धाम की नवद्वीप मायापुर धाम की गंगा माई जमुना माई की भक्ति देवी तुलसी महारानी की कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की शिशि राधा वृंदावन बिहारी आविर्भाव महोत्सव की निताय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरांग ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो श्री राधा वृंदावन बिहारी के पावन आविर्भाव महोत्सव में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। तो यहाँ पर प्रेमांजन प्रभु थोड़ा दर्शनार्थियों का अनुशासन देख लें। कल हनुमान जयंती थी और पूर्णिमा के दिन 2014 अप्रैल 15 के समय यहाँ शिशी राधा वृंदावन बिहारी जी का आविर्भाव हुआ। तो आज शिशी राधा वृंदावन बिहारी के आविर्भाव का 8वां वार्षिक महोत्सव है। रिबो तो सर्वप्रथम हनुमान जी के गुणों से हम कथा का प्रारंभ करते हैं, क्योंकि हनुमान जी श्री गुरु के प्रतीक हैं, प्रभु रामचंद्र जी के शरणागत भक्त हैं, सुग्रीव के अनुयायी हैं। सुग्रीव अर्थात सुंदर कंठ वाले, कंठ से प्रकट होता है वायु और वायु से प्रकट होता है शब्द और शब्द से प्रकट होता है अर्थ। तो जो रामचंद्र का दूत बनकर रामचंद्र जी के संदेश को जीवों में वितरित करें, जो दिखने में मनुष्य लगे लेकिन वास्तव में दिव्य हो, वो है वानर अर्थात वानरों के सेनापति सुग्रीव, उनके अनुयायी हनुमान जी, जो कि राम संदेश लेके जाते हैं। तो रामायण में प्रसंग आता है कि हनुमान जी जब सीता देवी के, वैसे ऐसा प्रसंग था कि सुग्रीव माल्यवंत पर्वत पर रामचंद्र जी चातुर्मास कर रहे थे और अपेक्षा कर रहे थे कि सुग्रीव अपने पारिवारिक स्वजनों के साथ स्नेहिल संबंध स्थापित करने के पश्चात किंचित भोग विलास इत्यादि करने के बाद फिर प्रभु की सेवा में पुनरुपस्थित होंगे और रामचंद्र जी इस अपेक्षा के साथ वर्षा ऋतु का हर क्षण सीता देवी के विरह में अपने नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित करते हुए शोक संताप मना रहे थे। 4 मास समाप्त हुए, रामचंद्र जी का धीरज अब परीक्षा के स्तर पर आ गया। लक्ष्मण को देखकर कहते हैं कि लक्ष्मण 4 मास हो गए, अभी तक हमने जो अपेक्षा की कि सुग्रीव यहाँ पर आएंगे लेकिन वो अब तक सार्थक नहीं हुआ। मेरे मन में बड़ा क्रोध उत्पन्न हो रहा है कि सुग्रीव अपने आप को मेरी सेवा में समर्पित करके उसकी उपेक्षा कर रहा है, क्या उसे मेरे वचनों का कोई सम्मान नहीं? तो लक्ष्मण, मैं आपको आदेश करता हूं कि तुरंत जाओ और सुग्रीव के सामने ये संदेश रखो, ये न संकुचिता पंथा ये न वाली हतोगत समये तिष्ठ सुग्रीव मा वाली हतमन वगाह। लक्ष्मण, आप जाओ और उच्च स्वर में गंभीरतापूर्ण स्वर के साथ आप सुग्रीव को चेतावनी दो और बतलाओ कि जिस मार्ग से हमने वाली को मृत्यु के द्वार, मृत्यु के लोक भेजा है, वो द्वार और वो मार्ग आज भी खुला है, और इसीलिए अगर वो अनुशासन स्वीकार करके मेरे सामने प्रकट न हो तो हम अति शीघ्र उनको उसी मार्ग पर भेज देंगे। लक्ष्मण, तुरंत जाओ और चेतावनी दे के लौट के आओ। लक्ष्मण कहते हैं, प्रभो चेतावनी क्यों, मार के ही आ जाता हूं। प्रभु कहते, नहीं नहीं, अगर कोई सेवक कभी कोई गलती करे तो गरज कर चेतावनी दे सकते हो, है कि नहीं, लेकिन उसके ऊपर प्रहार मत करो। तब फिर लक्ष्मण सुग्रीव को चेतावनी देकर उनको लेके आते हैं और प्रभु रामचंद्र जी अपने स्नेहिल भुजाओं से उनको आलिंगन करके स्वीकार करके उसी सुग्रीव को जो 4 महीने तक इंद्र तृप्ति के भयंकर महासागर में निमग्न हो गए थे और श्री राम के सेवा को भूल गए थे, उन्हीं को उन्होंने अपनी सेवा में सीता देवी को खोजने के लिए जो सेना तैयार हो रही थी उसका सेनापति नियुक्त किया। और फिर सुग्रीव को कहने लगे कि अब आप अपने प्रशासन की बुद्धि से पूरे सैन्य बल को तैयार कीजिए जो चारों दिशाओं में जाकर सीता देवी की खोज करेगी। तो सुग्रीव ने जोर से उच्च स्वर में सारे वानरों को पूरे ब्रह्मांड से बुला लिया और सारे वानर करोड़ों की संख्या में वहां तैनात हो गए। तब सुग्रीव एक एक पक्ष को ब्रह्मांड के विभिन्न स्तरों पर जाकर कैसे सीता देवी की खोज करना है उसका विवरण करने लगे, आदेश करने लगे, उत्तर दिशा में आपको ये पर्वत मिलेगा, फिर सागर दिखेगा, फिर ये वन दिखेगा, ये दिखेगा, वो दिखेगा, पूरे ब्रह्मांड का भूगोल का इतना विस्तृत वर्णन करने लगे मानो साक्षात GPS प्रकट हो गए हो। इतना विस्तृत वर्णन रामचंद्र जी ने भी भूगोल का नहीं सुना था, भले वो परमात्मा स्वयं है। रामचंद्र जी बड़ी बड़ी आंखों से सुग्रीव के इस पूरे ब्रह्मांड के भूगोल के प्रस्तुतिकरण को देखकर अवाक रह गए और जब सुग्रीव ने चारों सेनाओं को अलग अलग आदेश कर दिया तब रामचंद्र से रहा नहीं कहा और सुग्रीव को बगल में लेके पूछते, सुग्रीव ये इतना डिटेल में ब्रह्मांड के कोने कोने में कौन सा पर्वत, कौन सा सागर, कौन सा वन, कौन सा टापू कहाँ पर है, अभी तक तो गूगल भी पैदा नहीं हुआ है, उसके पहले ही आपके अंदर इतनी जानकारी कहां से आ गई? तो सुग्रीव ने कहा, प्रभु अकेले में पूछ रहे हो इसलिए बताता हूं। अगर सबके सामने पूछते तो शायद नहीं बताता। तो प्रभु ने कहा, क्या हुआ? बोले, जब वाली मेरे पीछे लग गया था तो पूरे ब्रह्मांड में मेरा पीछा कर रहा था, तो ब्रह्मांड के कोने कोने में भागते हुए मैं छुपने के लिए जगह ढूंढ रहा था, तो वो छुपने के लिए जगह ढूंढते हुए मैं इतना गौर से एक एक जगह का निरीक्षण कर रहा था कि ये छुपने लायक है कि नहीं, कि क्या करें, पूरे ब्रह्मांड का भूगोल मेरे दिमाग में छिप गया है, ऐसा अमिट छाप आ गया है कि निकलता ही नहीं। क्योंकि कभी कभी सदमा में जब कभी कुछ घटना होती है वो हमेशा के लिए अमिट छाप छोड़ जाता है। फिर सुग्रीव कहते हैं, प्रभो उस समय तो मुझे लगा कि ये जीवन का सबसे भयंकर हादसा है और मैं सोच रहा था कि ऐसे भयंकर शोक और संताप के दिन कब समाप्त होंगे, लेकिन अब आपकी ये सेवा मेरे सामने प्रकट हुई है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि
उस समय जो दुर्भाग्य और दुर्घटना का सूचक लग रहा था वो वास्तव में आज सीता देवी के खोज की, आपके चरणों की सेवा के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाधि और सर्वश्रेष्ठ योग्यता बन गई है। इसलिए जब जीवन में दुर्घटना हो, प्रतीक्षा करना, हो सकता है वो दुर्घटना का अनुभव भविष्य में सेवा में काम आएगा। जब दुर्घटना आए तब भी बजाना ताली। तब मत देना राम को गाली। तो हनुमान जी वो अपने पक्ष का जो नेतृत्व तो नहीं कर रहे थे, जांबवंत थे, अंगद थे, हनुमान जी विनम्र सेवक के रूप में थे। अब रामचंद्र जी घड़ी घड़ी सीता देवी का स्मरण करके उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगते, आर्तनाद करने लगते, हे सीते, ही सीते, ही सीते। तो प्रभु रामचंद्र जी के इस भावनात्मक प्राकट्य को देखकर हनुमान जी अपने मन को वशीभूत करने का बहुत प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन क्या करें, अल्टीमेटली ब्रह्मचारी थे, तो मन में डाउट उठ ही गया कि यार महात्माओं को तो स्थित प्रज्ञ होना चाहिए, जीवन में उतार चढ़ाव होते रहते हैं और प्रभु ने ही शास्त्र दिया है और महात्माओं के लक्षण वर्णन किए हैं कि कितना भी शोक क्यों न हो धीरज रखना चाहिए, गंभीर होना चाहिए। ये बिल्कुल सामान्य मनुष्य की तरह रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, शोक व्यक्त कर रहे हैं और वो भी निर्लज्ज होकर, ये क्या है, महात्माओं के लक्षण नहीं लग रहे। ऐसे हनुमान जी के विशाल श्रद्धा के अमृत सागर के अंदर ऐसे एक शंका का विष का बुलबुला उठ गया। छोटा सा बुलबुला था लेकिन था, शंका का बुलबुला उठा और उनको लगा कहीं कोने में उठा कोई देखेगा नहीं, लेकिन रामचंद्र जी तो परमात्मा है, समझ गए। हनुमान जी को देख के मुस्कुराए, बेटा ब्रह्मचारी बहुत होशियार समझता है अपने आप को, तुमको क्या लगता है तुम समझ सकते हो सब कुछ। कुछ बोले नहीं, मुस्कुराए केवल, क्योंकि कई प्रश्नों का उत्तर शब्दों से दिया जाता है, कई प्रश्नों का उत्तर शास्त्र पढ़कर समझ में आता है, कई प्रश्नों का उत्तर दूसरे भक्तों के साथ विचार विमर्श करके उनके अनुभव को सुनकर समझकर होता है और कई प्रश्नों का उत्तर काल का झापड़ खाके ही मिलता है। तो फिर रामचंद्र जी ने कहा, कोई बात नहीं, इनको मैं अपना सुंदर जो अंगूठी है वो दे देता हूँ। रामचंद्र जी ने अपनी अंगूठी दे दी और कहा कि भाई जब सीता देवी मिलेगी उनको ये दे देना। तो हनुमान जी अंगूठी लेके निकले और उनको ये पता नहीं था कि रामचंद्र जी ने अंगूठी क्यों दी है, क्योंकि रामचंद्र जी जानते थे कि सीता देवी को यही ढूंढ पाएंगे और जब देखेंगे तब उनका संशय निवारण होगा कि मैं क्यों रो रहा था। तब खैर एक सुंदरकांड का पूरा प्रसंग आता है कि कैसे हनुमान जी छलांग लगा के गए और जब अशोक वाटिका में सीता देवी के समक्ष प्रकट हुए, जब हनुमान जी ने सर्वप्रथम सीता देवी का दर्शन किया, सीता देवी के साक्षात दिव्य स्वरूप का दर्शन करके सर्वांग सुंदरी कोमलांगी सीता देवी के उस अति कोमल और अति सर्वश्रेष्ठ लावण्य को देखकर हनुमान जी का हृदय पूरी तरह परिवर्तित हो उठा, वो अवाक रह गए और अचानक उनके हृदय में एक महान परिवर्तन की क्रांति उत्पन्न हुई और हनुमान जी सोचने लगे उल्टा। हनुमान जी सीता देवी के कोमल अंगों को देखकर, सीता देवी के मुखमंडल के तेज को देखकर, सीता देवी के गुणों को देखकर, सीता देवी की अंग कांति जो चारों दिशाओं में अरुणोदय की वेला में प्रकट कोटि कोटि सूर्य के समान प्रभा चारों तरफ प्रदर्शित कर रही थी, उस आभा को देखकर हनुमान जी के मन में ये विचार उत्पन्न हुआ, क्या, कि अरे इतनी सर्वश्रेष्ठ सुंदरी सर्वगुण संपन्न सीता देवी का संग त्याग करने के बाद रामचंद्र जी इतने समय तक जीवित कैसे रह पाए? रामचंद्र जी का हृदय है कि अंदर बहुत बड़ा पत्थर? तो हनुमान जी का जो विश्लेषण था अब बिल्कुल 180 डिग्री उस तरफ चला गया। पहले रामचंद्र जी के ऊपर प्रश्न उठ रहा था, अब रामचंद्र जी की वो अंदर ही अंदर प्रेममय आलोचना करने लगे, है कि नहीं? तो वो प्रणयपूर्ण आलोचना थी, ये कोई द्वेषपूर्ण आलोचना नहीं थी। और वो सोच ही रहे थे कि सीता देवी कितनी सुंदरी हैं, और तब वो सीता देवी के सामने आकर हृदय से अपना नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर सीता देवी के चरण कमलों में निवेदन करते हैं कि देवी, आप जैसे सौभाग्यवती लक्ष्मी का ऐसे महाभयंकर असुरों के बीच रहना शोभा नहीं देता। हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी बड़े पीड़ित हैं, और उनके दास के रूप में मेरा कर्तव्य बनता है कि आपको सबसे श्रेष्ठ सुझाव और इस संपूर्ण समस्या का सबसे आसान समाधान मैं बताऊं। सीता देवी ने कहा, क्या है वो? हनुमान जी कहते हैं, आप मेरे पीठ पर आरूढ़ हो जाइए, मैं वायुपुत्र हूं, जैसे ही आप मेरे पीठ पर बैठ जाओगे मैं छलांग लगाऊंगा, अगले क्षण हम रामचंद्र जी के पास पहुंच जाएंगे। कैसा लगा आइडिया? तो आप अगर रामचंद्र जी के पास पहुंच जाते हो, रामायण समाप्त, प्रसाद ले सकते हैं फिर। सीता देवी ने यह सुना और कहा, संभव नहीं। हनुमान जी ने कहा, क्यों संभव नहीं? सीता देवी ने कहा, पता नहीं, आप शायद वानरों की अपने असुरों की शक्ति नहीं जानते, लंकेश्वर रावण और उसके अनुयायी बड़े शक्तिशाली हैं। इसको सुनकर हनुमान जी अपना शरीर ऊपर आकार कर दिए, आकार बिल्कुल गगनचुंबी कर लिए, इतना विशाल हो गए। और उसके बाद फिर नॉर्मल आकार में आकर कहते हैं, साइज देखा था ना, कोई असुर टिक सकता है क्या इसके सामने? रावण की पूरी आर्मी भी आ जाए, मैं केवल उनके ऊपर शवासन करूंगा, मर जाएंगे, तो क्या चिंता करती हो? युद्ध तो बहुत दूर की बात है कि नहीं? दो करवट बदलूंगा लेटे हुए, खर्राटे मारते हुए, नींद भी हो जाएगी, वो नालायक समाप्त भी हो जाएंगे। कैसा लगा आइडिया? सीता देवी कहते, नहीं नहीं, और क्या ऑब्जेक्शन है? दूसरा बोले, आपके पीठ पे मैं बैठ के चलूंगी, लेकिन जब आप समुद्र पार करोगे तो नीचे समुद्र को देखकर कहीं मुझे टेंशन ना आ जाए और घबराहट आकर फिर मैं अपने भावनाओं पर नियंत्रण न कर पाऊं और फिर बैलेंस छूट जाए, डूब जाऊंगी नीचे। हनुमान जी ने कहा, अरे क्या बात करती हो, मुझे पता नहीं कि आप किसकी पुत्री हो। लक्ष्मी जी किसकी पुत्री हैं? समुद्र मंथन के समय सबसे पहले कौन प्रकट हुए थे? समुद्र मंथन के समय आठवें स्कंद में सबसे पहले क्या प्रकट हुआ? विष। पहले हलाहल विष प्रकट हुआ, उसको किसने पिया था? शिवजी ने। शिवजी ने कहां तक पिया उसको? कंठ तक। अंदर भी नहीं लिया, बाहर भी नहीं उगला। तो कोई कभी जीवन में गाली दे तो शिवजी को याद करना चाहिए, वो विष की तरह जो गाली है उसको बहुत अंदर ले लेंगे तो सेवा करने का उत्साह चला जाएगा, उसको वापस उगल देंगे तो आगे सेवा ही नहीं बचेगी और शायद सेवक भी नहीं बचेगा। इसलिए शिवजी को याद करके कभी भी कोई आलोचना हो उसको अपने कंठ में धारण कर लेना है, सहन करते हुए। तो हलाहल विष पहले प्रकट हुए, उसके बाद फिर लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। तो इसलिए लक्ष्मी देवी को विष का छोटी बहन माना जाता है, या विष को लक्ष्मी देवी का बड़ा भाई माना जाता है। और लक्ष्मी के पति कौन? नारायण, कृष्ण, राम। तो भगवान को छोड़कर और कोई व्यक्ति लक्ष्मी को अपनी संपत्ति बनाने का अगर दुस्साहस करे, छोटी बहन पर अगर कोई गलत दृष्टि डाले तो छोटी बहन अपने बड़े भाई को उसके जीवन में भेज देती है और ऐसे व्यक्ति का जीवन विषैला हो जाता है। ये साइड पॉइंट था, मेन पॉइंट हनुमान जी का है, लेकिन समझने वाले समझ गए कि हनुमान जी बोले, अरे प्रभु जो अपने समुद्र देवता हैं वो तो आपके पिता हुए, कोई पुत्री पिता से क्यों घबराए? कोई समस्या भी होती है घर पर, वो पिता के घर पर ही जाती है, तो फिर पिता से क्या घबराना। जगन्नाथपुरी में भी इसका प्रमाण है, जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा तीनों वहां पर विराजमान रहते हैं और जगन्नाथ मंदिर के बगल में कौन सा समुद्र है, बे ऑफ बंगाल। तो समुद्र की बहुत जोर जोर से आवाज आती है तो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होते बलराम जी। बलराम जी जगन्नाथ जी को देख के बोलते हैं, जगन्नाथ अपने ससुर को संभालो, है कि नहीं? जैसे कहते हैं ना, तीन प्रकार के जीव होते हैं, सुर असुर और ससुर। तो कोई मतभेद होता है तो जगन्नाथ जी के जीवन में भी कोई समस्याएं आती है तो बलराम जी बोल रहे हैं उनको, अरे उनको समझाओ। जगन्नाथ जी फिर सोचे क्या करे, लक्ष्मी देवी को कहते हैं, अपने पिता को बोलो थोड़ा आवाज न करे। लक्ष्मी देवी बोलती है, भाई मैं क्यों बोलूं? तो फिर बड़ी समस्या हो जाती है, क्या करे। तब हनुमान जी प्रकट होते हैं तो हनुमान जी आकर कहते हैं, प्रभु कोई सेवा हो तो बताना। तो कहते हैं कि भाई ये जो ध्वनि आ रही है उसको आप थोड़ा साउंड प्रूफिंग कर दो तो अच्छा होगा। तो हनुमान जी वहां ऐसे अपने कानों को लेके खड़े हो जाते हैं, अगर आप जगन्नाथ मंदिर के कौन सा गेट है, साउथ गेट, वो गेट में जाओगे तो कान फाटा हनुमान जी का दर्शन मिलेगा, जहां हनुमान जी खड़े हैं अपने कानों को यूं लेके, जहां से समुद्र की ध्वनि अंदर आ जाती है तो जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण के अंदर आपको समुद्र की आवाज नहीं सुनाई देगी। तो इसलिए यहां पर हनुमान जी कहते हैं कि भाई ये तो आपके पिता हैं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। तो अब सीता देवी कहती हैं, नहीं लेकिन तुम पर पुरुष हो। हनुमान जी कहते हैं, भाई मैं पुत्र हूं, पुत्र माता को उठा के लेके जा तो क्या प्रॉब्लम है। फिर सीता देवी कहती है कि नहीं, वास्तव में रीजन कुछ और है। तो हनुमान जी बोले, अरे मेरा टाइम पास हो रहा है यहां पे, इतना अच्छा प्रस्ताव दे रहा हूं, बातें घुमाई जा रही है। सीता देवी कहती है कि इतने सारे दूसरे महिलाओं को रावण लेके आया है, अगर आपके साथ मैं चली गई मैं तो मुक्त हो जाऊंगी, लेकिन उनको कौन मुक्त करेगा। तो इसलिए मैं केवल अपने स्वार्थ को सर्वोपरि मानकर अपनी मुक्ति की कामना नहीं करना चाहती। तो इसलिए वाल्मीकि जी उस समय कहते हैं, सुंदरी रघुनाथस्य सुरस्त्री दुख शांतये दशाननस्य भवने दशमासान निवेशयन। कि सुंदरी रघुनाथस्य अर्थात जानकी देवी न केवल प्रभु रामचंद्र जी की सेवा के लिए तत्पर है, लेकिन जितने अन्य जीव हैं उनका इस भौतिक संसार से मुक्ति कैसे हो। तो जानकी जी का हृदय करुणा वरुणालय है, निरंतर उनके मन में इन जीवों के प्रति करुणा की भावना निरंतर छलकती रहती है और विचार करती रहती है, मननशील रहती है, हर ये हरि मेध से सोचती है कि कैसे इनको हम मुक्त करें। तब जाकर हनुमान जी को स्पष्ट कह देती है कि मैं आपके साथ नहीं आ सकती। तब फिर हनुमान जी संदेश देने के पश्चात लंका का विध्वंस करते हैं, फिर रामचंद्र जी को संदेश पुनः लौटाते हैं। तब फिर रामचंद्र जी की सेना आक्रमण के लिए तत्पर होती है। तो हनुमान जी प्रभु के दूत हैं, प्रभु के संदेश वाहक हैं, प्रभु के हृदय की भावनाओं को वेदनाओं को समझकर तन मन धन के साथ उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने 500 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ब्रजभूमि वृंदावन में जो लीलाएं की उनको विश्व के समक्ष प्रकट करने के लिए आंदोलन चलाया। कृष्ण आए थे प्रेम का आस्वादन करने, प्रेम का वितरण करने। प्रेम रस निर्यास कोरिते आस्वादन, राग मार्ग लोके भक्ति कोरिते प्रचारण। और तब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को एक उदाहरण स्वरूप प्रकट करके उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान 11 वर्षों तक किया। और तब परीक्षित महाराज दशम स्कंद में कहते हैं कि अरे ब्रह्मा जी के 311 ट्रिलियन ईयर्स में केवल 11 साल कृष्ण इस भौतिक जगत में वृंदावन में अपनी लीला प्रकट करते हैं। जिन ब्रजवासियों ने उनका दर्शन किया कितना सौभाग्य था उनका। अथान्यदपि कृष्णस्य तोकाचरितम् अद्भुतम् मानुषम् लोकमासाद्य तत्जातिम् अनुरुन्धत। कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी जाति के प्रति प्रेम होता है, वैसे ही श्री कृष्ण अलग अलग लीला किए, वामन के रूप में आए, मत्स्य के रूप में आए, कूर्म के रूप में आए, लेकिन उन लीलाओं के साथ मानव समाज के लोग इतना आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, है कि नहीं। मत्स्य, मत्स्य की क्या बाल लीला हो सकती है, कूर्मदेव ने क्या बाल लीला की, और नरसिंह देव वो तो केवल हिरण्यकश्यपु का बाल नोचने आए थे, उनको समाप्त करने आए। तो ये बाल लीला केवल श्री कृष्ण की है। तो कहते हम उन लीलाओं का श्रवण करना चाहते हैं। तो ये कृष्ण प्रकट किए और प्रकट करने के बाद कृष्ण ने अपनी लीलाएं समाप्त की, लेकिन उन लीलाओं का विज्ञापन और ब्रज प्रेम क्या है, ब्रह्मांड के कोने कोने में उस ब्रज प्रेम की गुंजारों पहुंचाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रकट हुए 500 वर्ष पूर्व नवद्वीप मायापुर में। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह सिद्ध किया। कृष्ण रजते कखेला सर्वोत्तम नर लीला नर बपू जहार स्वरूप गोपवेश वेणुकर नव वट वपुपर। श्री चैतन्य महाप्रभु सिद्ध कर दिए कि अन्य रूपों में भगवान श्री कृष्ण का श्याम सुंदर स्वरूप सर्वश्रेष्ठ है। सर्वोत्तम नरलीला नर वपु जहार स्वरूप आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन। तो श्री कृष्ण जो ब्रज में प्रकट हुए वो सर्वश्रेष्ठ है। और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने अनुयायी रूप सनातन को, महाप्रभु स्वयं तो जगन्नाथपुरी में रहे, कोई राधा कृष्ण विग्रहों की स्थापना महाप्रभु ने नहीं की, लेकिन उन्होंने अपने अनुयायियों को ये आदेश किया। तो सनातन गोस्वामी ने मदन मोहन रूप गोस्वामी ने राधा गोविंद देव को प्रकट किया, उनकी सेवा पूजा की, वो उनके आराध्य देव रहे और उनके पद चिन्हों में चलते हुए बाकी गोस्वामी ने भी अनेक विग्रहों की स्थापना की। तो महाप्रभु ने उनको आदेश दिया, कृष्ण प्रेम कृष्ण सेवा सेवा प्रवर्तन लुप्त तीर्थ उद्धार आर वैराग्य शिक्षण। ऐसे स्थलों को प्रकट करो ब्रजभूमि वृंदावन में जो कृष्ण प्रेम का संचार करे, अर्थात मंदिरों की स्थापना और विग्रहों की स्थापना। वृंदावने कल्पद्रुमे सुवर्ण सदन महायोग पीठ तहां रत्न सिंहासन। और कबीरराज गोस्वामी वर्णन करते हैं राधा गोविंद देव मंदिर के विषय में, इतना सुंदर जाज्वल्यमान विग्रह और उसकी सेवा पूजा लाखों लाखों लोग कर रहे थे। तारा वसे आछी सदा ब्रजेंद्र नंदन श्री गोविंद देव नाम साक्षात मदन। और वो साक्षात मदन अर्थात कामदेव की तरह आकर्षक, सहस्र सेवक सेवा कोरे अनुक्षण सहस्र वदने सेवा न जाय वर्णन। 500 वर्ष पूर्व 1590 और 1670 के बीच राधा गोविंद मंदिर वृंदावन का ऐश्वर्य ऐसा था कि वहां हर वस्त्र सोने और हीरे से जड़े हुए थे, दिन में 56 भोग लगते थे, लाखों भक्त लोग सेवक के रूप में सेवा करते थे। आज जाओ बंदर ज्यादा मिलेंगे, इतने लाखों की संख्या में लोग वहां नहीं दिखेंगे। उस समय का ऐश्वर्य आज दृष्टिगोचर नहीं होता है। अर्थात भक्ति सनातन है, भगवान सनातन है, भक्त सनातन है, लेकिन किस परिवेश में भक्ति होगी और किस प्रकार मंदिरों की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति समय के साथ डगमगाएगी, इसकी कोई गारंटी भगवान नहीं लेते। 100 वर्षों तक जगन्नाथ मंदिर के अंदर जगन्नाथ भगवान नहीं रहे, लेकिन फिर भी जगन्नाथ जी के प्रति भक्ति वो भक्तों के हृदय में कायम रही। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं विग्रह के रूप में तब प्रकट होता हूं जब वैष्णवों के हृदय में मेरे प्रति श्रद्धा हो, और उस श्रद्धा को प्रकट करने के लिए, मेरी सेवा पूजा का संचार करने के लिए मुझे प्रार्थना करते हैं, और तब उस प्रार्थना के आदान प्रदान में मैं उनके हृदय के भावनाओं को स्वीकार करने विग्रह के रूप में प्रकट होता हूं। इसलिए विग्रह का प्रकट होना वैष्णव की प्रार्थना और निवेदन से निकट से जुड़ा हुआ है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने 1966 में अमेरिका जाने का जब निश्चय किया, 65 में अमेरिका गए, 1965 में, 1966 में इस्कॉन की स्थापना की, और 1967 में प्रभुपाद जी सैन फ्रांसिस्को गए और वहां पर मालती माता जी एक जगन्नाथ का कोई छोटा सा एक शॉप से लेके आई विग्रह, प्रभुपाद के सामने रखी। प्रभुपाद ने प्रणाम किया, बोले ये तो जगन्नाथ हैं, बोले बलदेव सुभद्रा का है, उनको भी लेके आओ। और उस समय माता जी ने सोचा कि मैं तो ऐसे उठा के लाई उसको, बिना पैसे दिए चुरा के लाए, अभी बाकी दो खरीदने जाएं तो पकड़े जाएंगे, तो बाकी दो को भी चुरा के लाए। तो तीनों जो है विग्रह इस तरह आए। प्रभुपाद ने श्याम सुंदर प्रभु को कहा इनका विग्रह तैयार करो, श्याम सुंदर प्रभु ने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का विग्रह तैयार किया। प्रभुपाद ने कहा हम इसकी प्रतिष्ठा करेंगे, और उस समय प्रतिष्ठा कैसी हुई, जितने हिप्पी लोग आए थे सबको प्रभुपाद जी ने सामने खड़ा किया और कहा एक एक के हाथ में मोमबत्ती देंगे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के सामने मोमबत्ती लेकर उसको उनके सामने घुमाओ इन सर्कल्स। तो किसी हिप्पी ने पूछा कितनी बार घुमाए, प्रभुपाद ने कहा जब तक हाथ थकता नहीं तब तक। तो उस दिन कोई ब्राह्मण इनिशिएशन का नियम नहीं था, उस इंस्टॉलेशन में भाग लेने के लिए एक ही योग्यता थी, कपड़ा पहन के आओ। अगले दिन प्रभुपाद दर्शन करने गए, जगन्नाथ जी स्थान पर नहीं थे, बलदेव सुभद्रा थे, जगन्नाथ जी गए। प्रभुपाद बोले जगन्नाथ कहाँ गए, उन्होंने कहा अरे जगन्नाथ जी को हम बीच पे लेके गए। प्रभुपाद बोला बीच पे लेके गए क्यों, तो उन्होंने कहा आप ही ने कहा कि आप लोगों को जो अच्छा लगता है वो भगवान को ऑफर करो, तो हमको बीच पे घूमना अच्छा लगता है, हम सोचे बैठे बैठे बोर हो रहे होंगे, घुमा लाते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा ये घुमाने की पद्धति ठीक है, लेकिन उसके लिए दूसरा उत्सव होता है, उसको कहते हैं रथ यात्रा, जगन्नाथ रथ यात्रा। तो प्रभुपाद जी ने उसको भी वहां पर जो है आरंभ कर दिया। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी ऑस्ट्रेलिया गए, और प्रभु तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा इस्कॉन के पहले डीटीस रहे, फिर ऑस्ट्रेलिया में जाके प्रभुपाद ने कहा यहां डीटीज रखेंगे। अच्छा एक इंडियन व्यक्ति ने लाके सिडनी में देखा मंदिर में डीटीज नहीं है, तो उन्होंने कहा मैं डीटीज भेजूंगा, तो बोला ठीक है भेजो। तो जब तक इंडियन ने बॉम्बे से डीटीज को शिप किया, वो इस्कॉन वाले सिडनी के उस जगह से रेंटल छोड़ के दूसरे जगह चले गए, एड्रेस चेंज कर दिया। डीटीज पुराने एड्रेस पे आए, तो पुराने एड्रेस पे था वो कोई दूसरा आदमी था, उसको पूछा वो इस्कॉन वाले कहाँ गए, अपने को पता नहीं भैया ये डीटीज ये लेके आया। अरे हम मैं क्या करूँ, लेके जाओ इसको। वो डीटीज सिडनी पोर्ट पर 6 महीने पड़ा था, वापस उस ओनर के पास आ गया बम्बई में। 1971 में क्रॉस मैदान का फेस्टिवल का पोस्टर देखा उस डोनर ने, उसको लगा अरे ये तो वही लोग हैं, बदतमीज लोग, जो मेरा डीटीज वापस कर दिए, जाके उनको वापस कन्विंस करता हूँ लेने के लिए। वो डीटीज लेके आए मिलने के लिए प्रभुपाद को पंडाल में। प्रभुपाद को पूरा स्टोरी बताया, अरे मैंने डीटीज भेजा भैया आपको, आप लोग उसको भी लौटा दिए। प्रभुपाद ने कहा अरे क्या करे, अपने शिष्य थोड़े ऐसे ट्रांसेंडेंटल है, नए नए हैं, बच्चे हैं बेचारे, कोई बात नहीं, डीटीज को हम रख लेंगे। तो ऑलरेडी क्रॉस मैदान पंडाल प्रोग्राम में एक डीटीज थे, कौन थे, राधा रास बिहारी। उनके बगल में प्रभुपाद जी ने कहा थोड़ा जगह है, ये डीटीज को मैं अभी रखता हूं, सो दैट यू आर कन्विंस्ड कि आई एम एक्सेप्टिंग। तो प्रभुपाद जी ने तुरंत उस डीटीज को वहां रख दिया, और प्रभुपाद ने उस डोनर के सामने कहा इसका मैं नाम देता हूं राधा गोपीनाथ। तो 1971 के वो क्रॉस मैदान पंडाल में मार्च 25 से अप्रैल 4 के बीच में पंडाल के स्टेज पर राधा रास बिहारी और राधा गोपीनाथ दोनों स्टेज पर थे। राधा गोपीनाथ चौपाटी वाले नहीं, वो सिडनी में गए बाद में। सिडनी में जाने के बाद प्रभुपाद इंस्टॉल किए, फिर प्रेसिडेंट बोले प्रभुपाद यहाँ पे तो ब्राह्मण कोई है ही नहीं। प्रभुपाद ने कहा तुमको बना देता हूँ। बोला मेरे को तो 6 ही महीना हुआ है। प्रभुपाद ने कहा बाकी लोगों को कितना हो, बोला 2 महीना। तो प्रभु का तुम सीनियर मोस्ट हो, हाईली क्वालिफाइड। तो प्रभुपाद ने उनको ब्राह्मण दीक्षा दे दिया और बोला यू वर्शिप द डीटी। उसने कहा मुझे पता ही नहीं। प्रभुपाद तुरंत डीटीज को देख के प्रे करने लगे कि आपकी सेवा के लिए 9 सिखियों को मैं लगा के जा रहा हूं, इनको कुछ पता नहीं क्या करना है, आप ही थोड़ा बुद्धि दे देना, अपनी सेवा पूजा की व्यवस्था कर लेना भैया आप ही। प्रभुपाद प्रार्थना किए और जाते जाते सब बोले कोई इंस्ट्रक्शन। प्रभुपाद ने कहा 6 बार भोग लगाना, ऑफर 6 टाइम्स भोगा। तो उनको लगा भोगा भी हलवा की तरह कोई स्वीट डिश है। तो अगले 4 महीने वो लोग खोज रहे थे भोगा का रेसिपी क्या है, क्योंकि 6 टाइम्स अपने को ऑफर करना है, हलवा पता है, स्वीट राइस पता है, गुलाब जामुन पता है, ये भोगा कौन सा स्वीट है। 4 महीने बाद प्रभुपाद लौट के बोले कैसा चल रहा है। प्रभुपाद ने देखा डीटीज अच्छे सुंदर सुंदर लग रहे, बोले अच्छा सेवा कर रहे हो। बोले हाँ सेवा तो चल रही है, लेकिन एक आइटम अपन फॉलो नहीं कर पाए। बोले क्या, वो भोगा का रेसिपी नहीं मिला। बोला भोगा का रेसिपी क्या बोल रहे यार। बोले आपने कहा 6 बार भोगा लगा, वो क्या आइटम है। बोले अरे ओह, प्रभुपाद ने कहा भाई जो भोग जो लगता है भगवान को उसको भोग कहते हैं। बोला ओ ऐसा क्या, फिर तो कर रहे हैं अपन। तो ये हाल था उस समय। पृथु प्रभु बोलते जर्मनी में उनके पास तुलसी महारानी नहीं थी, तुलसी क्या है देखा नहीं था, और पता था कि तुलसी तो तुलसी थोड़ा लाकर वो लोग बॉक्स में रख के उसको चूरा बना के डालते थे। फिर किसी ने आके प्लांट दिया और कहा यही तुलसी है, पानी डालने लगे, प्लांट फटाफट बढ़ने लगा। किसी ने कहा प्रभुपाद ने कहा है भक्ति अच्छी हो जिस मंदिर में तुलसी बहुत फास्ट उगती है। सब एक दूसरे को कंग्रेचुलेट करने लगे, क्या भक्ति कर रहे हैं अपन। फिर एक इंडियन व्यक्ति आए, बोले ये तुलसी नहीं बंबू का पेड़ है। तो बोले क्या क्या परिस्थिति में भक्ति किया है। तो वासु घोष जी ने कहा यदि गौर न होई तो, यदि गौर न होई तो तबे की होई तो के माने धरे तामगे राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जानत के। अगर महाप्रभु नहीं होते कि राधा रानी की महिमा गोपियों की महिमा हम तक कहाँ पहुँचती, क्योंकि भागवत पुराण में तो है ही नहीं उनका वर्णन। गोपियों का वर्णन है लेकिन राधा रानी का प्रधान रूप से किसी श्लोक में वर्णन नहीं। तो वैसे ही जो अर्वाचीन समाज में पूरे विश्व के इस्कॉन के भक्तगण जो भक्ति कर रहे हैं, हमारे लिए तो राधा रानी एक बहुत ही ऊंची तत्व है। यदि शीला प्रभुपाद न हुई तो तबे की हुई तो कौन इतना साहस करता कि इतने नवसिखिया लोगों के बीच अर्च विग्रह, राधा कृष्ण के अर्च विग्रह की सेवा पूजा स्थापित करना, और इतने सुंदर सुंदर मंदिर, सुंदर सुंदर विग्रह प्रभुपाद जी ने स्थापित किए। तो उन्हीं के पद चिन्हों में चलते हुए महाराज आए क्या? श्रीधर जी आ रहे हैं। हमने महाराज को भी निमंत्रण दिया है, पहले तो बहुत मना किया, लेकिन मैंने कहा कि सब लोग अनुशासन पालन करेंगे, दूर रहेंगे, और मैंने कहा था मास्क भी पहनेंगे लेकिन कोई बात नहीं, अभी डॉक्टर साहब खड़े हैं, वो देख लेंगे। तो महाराज की बड़ी इच्छा थी कि गोवर्धन इको विलेज में यहाँ सेवा पूजा हो और प्रचार कार्य बढ़े। भागवत में तो कृष्ण बलराम का वर्णन है, कृष्ण गोरक्षा के प्रतीक हैं। कृष्ण बांसुरी से किसको बुलाते हैं? अधिकतर लोग बोलते हैं गोपियों को, है कि नहीं? क्योंकि सबका इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा है, गायों की सेवा करने में इंटरेस्ट कम है। तो कृषि गोरक्षा के प्रतीक कृष्ण है, बलराम जी के हाथ में हल है, कृषि के प्रतीक है। तो प्रभुपाद ने कहा अगर कोई पूछेगा अरे इस्कॉन वाले कृष्ण और बलराम की सेवा करते हो लेकिन कृष्ण गायों को देखते थे और बलराम जी खेती करते थे, इस्कॉन वाले कितना है जो गायों की सेवा करने वाले और खेती करने वाले, इस्कॉन के डिवोटी कितने हैं, कोई है क्या? तो उत्तर ये ना मिले, नहीं हम लोग तो भैया शहर में ही भक्ति करते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद ने कहा कुछ तो थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स होने चाहिए जहां कृषि और गोरक्षा का उदाहरण हो, इसीलिए गोवर्धन इको विलेज की स्थापना हुई। और फिर महाराज ने विचार किया कि यहाँ पर सेवा हो, तो कई भक्त लोग आए थे, ब्रह्मचारी आए थे, लेकिन इतना कठिन था यहाँ पर, वेदर देख रहे हो कितनी गर्मी है, इसमें ये धूप में खड़े होकर कंस्ट्रक्शन करना, ये वो, तो काफ़ी सारे लोग सोच रहे थे कि कब तक यहाँ रहेंगे। बोरिया बिस्तर बांधने का प्लान बन गया था मेरा भी तब सोचा कि चलो भाई अगर राधा कृष्ण आ जाएंगे तो शायद विचार बदल जाएगा। तो अक्टूबर 2013 में यहाँ पर फाउंडेशन डाला इसका और कहा कि जल्दी से जल्दी हम लोग करेंगे, अप्रैल तक ट्राई करेंगे और फिर जिसको जाना हो चले जाएगा। 6 महीने के अंदर कठोर परिश्रम करके इस मंदिर को खड़ा किया और 15 अप्रैल 2014 को राधा वृंदावन बिहारी जी प्रकट हो गए। और फिर राधानाथ महाराज अब आगे बताएंगे कि उन्होंने विग्रहों का नाम राधा वृंदावन बिहारी क्यों दिया। His Holiness राधानाथ स्वामी महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो मैं रूप रघुनाथ प्रभु से निवेदन करता हूं कि वो ट्रांसलेशन भी करे महाराज के इस कथा का।